वेद विरोधी स्वर। एक ओर वेदों को एकमात्र अविसंवादी प्रमाण मानने की प्रवृत्ति जिस प्रकार तीव्र रूप में धारण करती जा रही थी, दूसरी ओर उसकी उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया भी चल रही थी। कितने ही तांत्रिक मतों ने अपने को खुल्लम खुल्ला वेद विरोधी संप्रदाय घोषित किया और दृढ़ कंठ से समस्त वैदिक मतों का प्रत्याख्यान किया। प्रतिक्रिया उतनी उग्र थी कि अत्यंत सहज बात को भी वे लोग भड़काने वाली भाषा में करते थे और हर प्रकार से वैदिक मार्ग का उल्टा सुनाई देने वाला वक्तव्य देते थे। सब समय उसका अर्थ उल्टा होता नहीं था। वह बहुत कुछ भड़काने वाली भाषा में जानबूझकर कहा जाता था, परंतु उसका वास्तविक अर्थ उतना भड़काने वाला नहीं हुआ करता था। विक्रम की 6वीं शताब्दी के बाद जो तांत्रिक प्रभाव भारतीय साधना के ऊपर पड़ा, वह परवर्ती काल के संतों या निर्गुड़िया भक्तों की साधना के रूप में प्रकट हुआ। इस साहित्य का बीजारोपण विक्रम की 6वीं शताब्दी में हुआ और विक्रम की 9वीं और 10वीं शताब्दी तक वह अंकुरित होता रहा। इसलिए संक्षेप में इस काल को धार्मिक प्रवृत्तियों का परिचय दे देना आवश्यक है। वस्तुतः विक्रम की 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक के धार्मिक इतिहास को परिपूर्ण रूप देने के लिए जो सामग्री उपलब्ध है, वह विशाल होने पर भी पर्याप्त नहीं है। इस कार्य को संपन्न करने में अधिकांश सांप्रदायिक ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ता है, परंतु जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, सभी धार्मिक साधक और संप्रदाय अपने सिद्धांतों के उपस्थापक ग्रंथ लिखी गए हैं, ऐसी बात नहीं। ऐसे अनेक संप्रदाय थे और रहे होंगे जिनका कोई ग्रंथ बचा नहीं। किसी संप्रदाय का जनता पर प्रभाव तो कम रहा है, पर ग्रंथ उनके अनुयायियों के द्वारा अधिक लिखे गए हैं। इसलिए ग्रंथों की संख्या का अधिक होना किसी संप्रदाय विशेष के प्रबल प्रभावशाली होने का लक्षण नहीं है। समसामयिक साधना पद्धतियाँ एक दूसरे को प्रभावित और रूपांतरित करती रहती हैं। इसलिए धार्मिक साधना के इतिहास में छोटी बड़ी सभी प्रवृत्तियों का महत्व रहता है। कभी कभी शुरू में अत्यंत मामूली दिखलाई पड़ने वाली भावधारा लोक धर्म का अत्यंत प्रबल रूप धारण करती हुई देखी गई है। हमारे आलोच्य काल में तांत्रिक साधना ने और योगाभास ने बहुत प्रबल रूप धारण किया था। इस काल की धार्मिक साधना के अध्ययन के लिए हमें अधिकांश संस्कृत पुस्तकों का आश्रय लेना पड़ता है। दक्षिण भारत की लोक भाषा में लिखे हुए भक्ति मूलक ग्रंथ आगे चलकर जबरदस्त दार्शनिक और धार्मिक संप्रदायों की स्थापना के कारण हुए हैं। इस तथ्य से यह अनुमान करना असंगत नहीं है कि अन्य धर्म संप्रदायों और साधना मार्गों के विकास में भी लोक भाषा का हाथ रहा होगा। इस दृष्टि से जितनी पुस्तकें हमें मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं है, फिर जो है भी सब का उद्धार भी कहाँ हुआ है। 5 रात्र साहित्य बहुत प्राचीन और विशाल है। यद्यपि इसके ग्रंथों की अनुश्रुतिक संख्या 108 बताई जाती है, तथापि 200 से भी अधिक संहिताओं का पता चला है, पर अभी तक कुल 13 संहिताएं ही छपी हैं। उनमें भी नागरी अक्षरों में 6 ही उपलब्ध हैं, बाकी तेलुगु या ग्रंथालिपि में छपी हैं। शैव आगमों और उपागमों की संख्या 198 बताई जाती है, पर उनमें से बहुत कम मुद्रित है। यही बात धारणियों, स्त्रोतों तथा इस श्रेणी के अन्य साहित्यों के लिए भी सत्य है। यहाँ एक बात विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है। इस देश में आज जितनी जातियाँ बसती हैं, वे सभी सदा से आर्य भाषा भाषी नहीं रही हैं। उत्तर भारत में सर्वत्र जन साधारण की भाषा आर्य भाषा बन गई है। आर्यों के आने के पहले इस देश में ऐसी अनेक जातियाँ जो आर्येतर भाषा बोला करती थीं। आर्यों के साथ इन जातियों का किसी भूले हुए युग में बड़ा कठोर संघर्ष हुआ था। असुरों, दैत्यों, नागों, यक्षों, राक्षसों आदि के साथ आर्य जाति के साथ कठोर संघर्ष की कहानियां हैं। उन्होंने धीरे धीरे आर्य भाषा और आर्य विश्वास को स्वीकार कर लिया, परंतु उनके विश्वास और उनकी भाषा ने नीचे से आक्रमण किया तथा आर्य भाषा ऊपर से आर्य बनने रहने पर भी उनकी भाषाओं और उनके विश्वासों से प्रभावित होती रही। उनके विश्वासों ने हमारी धर्म साधना और सामाजिक रीति नीति को ही नहीं, हमारी नैतिक परंपरा को भी प्रभावित किया। जैसे जैसे वे जातियां आर्य भाषा सीखती गईं, वैसे वैसे उन्होंने आर्यों की परंपरागत धर्म साधना और तत्व चिंतन को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे समूचा उत्तरी भारत आर्य भाषी तो हो गया, पर आर्य भाषी बनी हुई जातियों के संपूर्ण संस्कार भी उनमें ज्यों के त्यों रह गए। यह ठीक है कि कुछ जातियों ने जल्द आर्य भाषा सीखी, कुछ ने थोड़ी देर से, और कुछ तो जंगलों और पहाड़ों की ऐसे दुर्गम जगहों में जा बसी कि जहां आज भी वे अपनी भाषा और संस्कृति को पुराने रूप में सुरक्षित रखती आ रही हैं। परिवर्तन उनमें भी हुआ है, पर परिवर्तन जो जगत का धर्म है, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि विक्रमादित्य द्वारा प्रवर्तित संवत के प्रथम सहस्र वर्षों तक यह उथल पुथल चलती रही, और आज से लगभग एक सहस्राब्दी से कुछ पूरे ही उत्तर भारत प्रायः पूर्ण रूप से आर्य भाषा भाषी हो गया। संस्कृत के पुराण ग्रंथों से हम इन आर्येतर जातियों की सभ्यता और संस्कृति का एक आभास पा सकते हैं। आभास इसलिए कि वस्तुतः ये पुराण आर्य दृष्टि से तत्रापि ब्राह्मण दृष्टि से लिखे गए हैं, और फिर बहुत पुरानी बातें होने के कारण इन बातों में कल्पना का अंश भी मिल गया है। बौद्ध और जैन अनुश्रुतियों के साथ इन पौराणिक कथाओं के मिलाने से कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, पर यह तो हम भूल ही नहीं सकते कि ये अनुश्रुतियां भी विशेष दृष्टि से देखी गई हैं। अस्तु फिर भी जो सामग्री उपलब्ध है वह विपुल है, पर इतनी छितराई हुई है कि सबके आधार पर कार्य करना कठिन है। इस विषय की मीमांसा बहुत कम हुई है। बड़ौदा, मैसूर, काशी, कलकत्ता, अडियार आदि स्थानों से इधर बहुत अमूल्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। चीनी और तिब्बती भाषाओं में अनेक ऐसे ग्रंथों के अनुवादों का संधान मिला है जो मूल रूप से खो गया है। सुदूर सुमात्रा, जावा, बाली, थाई देश आदि देशों के मंदिरों में उत्कीर्ण लेखों से इनके विषय में अनेकानेक तथ्य उद्घाटित हुए हैं, पर अभी तक इन सबको मिलाकर मनन करने का प्रयास नहीं हुआ है। श्री भंडारकर की प्रसिद्ध पुस्तक वैष्णविज्म सैविज्म एंड माइनर सेक्टर्स ऑफ द हिंदूज इस विषय की पुरानी पुस्तक हो गई है। यद्यपि अभी बहुत ज्ञातव्य बातों के जानने का आकार वही है। नेपाल में भी श्री हरप्रसाद शास्त्री के देखे हुए ग्रंथ तथा बौद्ध गान और दोहे श्रेडर के वैष्णव संहिताओं की महत्वपूर्ण मीमांसा आर्थर एवेलेन की तंत्र शास्त्रीय पुस्तकें श्री गोपीनाथ कविराज द्वारा लिखित और संपादित शाक्त और नाथ मत के लेख और ग्रंथ तथा अन्य अनेक पंडितों के प्रयत्न अभी छितराई हुई अवस्था में हैं। इस क्षेत्र में उल्लेख के प्रयत्न फरकुहर का एन आउट लाइन ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया ही है, परंतु यह पुस्तक अधिकांश में साहित्यिक पैमाइश है। इधर हिंदी में भी श्री बलदेव उपाध्याय एमए साहित्याचार्य ने भारतीय दर्शन नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें अब तक के उपेक्षित वैष्णव, शैव और शाक्त आगमों के तत्व ज्ञान का बड़ा विशद विवेचन है। सब मिलाकर भारत के धर्म संप्रदायों के अध्ययन का प्रयत्न अभी बाल्यावस्था में ही है।